समस्त विश्व था।
वे अपनी ही तरह संसार को सुखी और समुन्नत बनाने के महान मिशन में निरत जीवन व्यतीत करते थे। विश्व के कोने कोने में फैली हुई भारतीय सभ्यता।
पुराण साहित्य पर दृष्टिपात करने से पता चलता है कि विश्वामित्र के पतित पुत्रों को देश निकाला मिला तो वे ऑस्ट्रेलिया चले गए और उस देश को नए सिरे से बसाया।
इस प्रकार त्रिणबिंदु राजकुमार के भी उस देश में जा बसने का विवरण मिलता है।
ऋषि पुलस्त्य भी उस देश में धर्म स्थापना के लिए गए थे।
ऑस्ट्रेलिया की आदिम जातियां अभी तक जो भाषा बोलती हैं उनमें भारतीय कोल, भील, संथाल एवं द्रविड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाओं के शब्दों का बाहुल्य है। इन लोगों में भारत जैसी वर्ण व्यवस्था एवं जाति पाति की ऊंच नीच की मान्यता अभी भी प्रचलित है।
शब्द बेदी बाण का एक प्रकार इन आदिवासियों का बूमरंग अस्त्र है जो निशाना वेधकर वापस लौट आता है।
पुनर्जन्म के संबंध में इन लोगों की भारत जैसी ही मान्यता है। अमेरिका को भारतीय इतिहास पुराणों में पाताल लोक कहा गया है और वहां नागराज के शासन की चर्चा की गई है। अभी भी उस देश में प्राप्त प्रतिमाओं और अवशेषों में नाग देवताओं की आकृतियां मिलती हैं।
यह नाग भारत की एक जाति थी। नागालैंड इन्हीं लोगों का क्षेत्र था। यह जाति आसाम से लेकर मध्य भारत तक फैली हुई थी। नागपुर आदि नगर आजकल जहां हैं वहां नागवंशी लोग ही रहते थे।
अभी भी नाग गोत्र वालों की संख्या अन्य गोत्र वालों जितनी ही है।
यही लोग आगे बढ़कर अमेरिका पहुंचे थे।
भारत की नाग पूजा प्रख्यात है।
अनंत, वासुकी, वासुदेव के नाम से सर्प पूजा का देवाराधन में महत्वपूर्ण स्थान है। नागपंचमी तो नाग पूजा का विशेष पूजन पर्व है।
संभवतः सर्प पूजक होने के कारण उन्हें भी नाग कहा जाने लगा है। उस वर्ग के अमेरिका पहुंचने के प्रमाणों की कमी नहीं है।
रावण के भाई अहिरावण का पाताल लोक में निवास वाल्मीकि रामायण से सिद्ध है।
दोनों भाइयों में समय समय पर कई प्रकार के आदान प्रदान होते रहते थे।
अन्य असुर भी परिस्थितिवश पाताल लोक गए और बसे हैं।
दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक है।
दैत्याश्च देवा नेते शुंभे देवीर्पयुधिये निशुंभे च महावीर्य शेषाः पातालमायुः। देवी ने जब शंभु निशुंभु को मार डाला तो बचे खुचे असुर भागकर पाताल लोक चले गए।
अमर कोश में पाताल लोक के कई नाम गिनाए गए हैं।
अधो, भुवन, पाताल, बलिसह रामादलम, नागलोकोत कुहर सुशिर विवरविलम, पाताल, रसातल, बलिग्रह, नागलोक, कुहूर, विवर आदि शब्द एक ही अमेरिका देश के बोधक हैं। दक्षिण अमेरिका के बोलिविया नगर के समीप खुदाई करके पुरातत्व विभाग ने जो अवशेष प्राप्त किए हैं उनसे उस क्षेत्र पर सूर्यवंशी इनका राजाओं के शासन का प्रमाण मिलता है।
कुछ ऐसे भी आधार हैं जो प्राचीन काल में इस देश पर राजा बलि का राज्य होने की साक्षी देते हैं।
मेक्सिको अमेरिका के आदिवासियों की एक जाति अपाच्य है। अपाचियों के बारे में ऐत्रेय ब्राह्मण के रुद्र महाअभिषेक प्रकरण में वर्णन आता है। तस्मादेतस्य प्रतीच्या दिशि येनिच्याना राजानो ये पाच्याना स्वराज्याय तेभिषिच्यन्ते स्वरालित्ये नानाभिषिक्ता नाचक्षते। इस वर्णन में पश्चिम दिशा के सुदूर देश में अपाच्यम एवं नीचिम लोगों के निवास की चर्चा है।
महाभारत में उद्दालक ऋषि के पाताल जाने का वर्णन है। महाभारत में पाताल नरेश अपनी सेना समेत लड़ने आए थे।
अर्जुन की पत्नी उलूपी अमेरिका से ही विवाह होकर भारत आई थी। सम्राट चंद्रगुप्त को यूनान के सेल्यूकस की बेटी विवाही थी।
मेवाड़ के राजा गोह की पत्नी ईरान के राजा नोशिरवां की पौत्री थी।
भारत से मग नामक एक पराक्रमी जाति मंगोलिया में जाकर बसी।
उसने अपने वंश के नाम पर उस देश का नामकरण मंगोलिया किया। इन लोगों का दूसरा नाम शक था और उस देश को शाकद्वीप भी कहा जाता था। मग और शक एक ही वंश के दो नाम थे। सामव पुराण स्वाध्याय 25 में इन लोगों के संबंध में निम्न विवरण प्राप्त होता है।
लवनोदात पर पारे क्षीरोदेव समावृतः जम्बू द्वीपात पर तस्याच्छाक द्वीप इति श्रुतः तत्र पुण्य जनपदाश्चतुर्वर्ण्यम समाश्रिता मगाश्च मामगाश्च मानसा मदगास्तथा मगाब्राह्मण भूयेष्ठा मामगा क्षत्रियास्तथा वैश्यास्तु मानसा गया शूद्रास्तेषान्तु मन्दगा विवस्वतम् पूजयन्तो धूपगन्धाद्भिः शुभम् इष्टादशकुलानि मगाना वेदवादिनाम् यास्यन्ति च त्वया साध्यत्र सन्निहितो रविः।
लवण सागर से आगे क्षीर सागर से घिरा शाक द्वीप है। यह जम्बू द्वीप से बहुत दूर है।
उस राज्य में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्ण बसते हैं।
वे सूर्य के उपासक हैं। उनके 18 कुल वेदपाठी हैं। इन्हीं को शक भी कहते हैं। महाभारत से भी इसकी पुष्टि होती है।
वर्णन है। शाकद्वीप च वक्ष्यामि यथावते पार्थिव तत्र पुण्या जनपदाश्च त्वारो लोकसभ्यता मंगाश्च मशुकाश्च मंदगा मांसास्तथा मंगा ब्राह्मण भूयेष्ठ स्वकर निर्ता नृप।
इस विवरण से शाकद्वीप में मंग लोगों द्वारा निवास तथा शासन करने की स्पष्ट चर्चा है। अफ्रीका में पाए जाने वाले जुलू लोग झल्ल वंश के क्षत्रियों की संतानें हैं।
प्रो टेलर ने अपने ग्रंथ ओरिजिन ऑफ आर्यंस ग्रंथ में ऐसे अनेक प्रमाण प्रस्तुत किए हैं जिनसे वर्तमान यूरोपियन नस्ल का आर्य रक्त के साथ मंगोल जाति वाली महिलाओं का संकरण होने से उद्भव माना गया है।
ऋग्वेदिक इंडिया ग्रंथ में भी इसी तथ्य की पुष्टि करने वाले प्रमाणों की भरमार है।
हॉसवर्थ हिस्ट्री ऑफ दी वर्ल्ड ग्रंथ में भी वर्तमान यूरोपियन नस्ल का विश्लेषण करते हुए यही निष्कर्ष निकाला है कि इस क्षेत्र में बसने वाली आदिम जातियों के साथ एशिया से आए आर्य लोगों का संकरण हुआ और वर्तमान यूरोपियन जातियों की वंश परंपरा विकसित हुई।
मैनुअल ऑफ हिस्ट्री ग्रंथ से यह मशनानगर रोडेशिया में सिद्ध होता है।
वहां सोना भी निकलता था और हाथियों का भी बाहुल्य था। ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णित मशनाम स्थान यह मशना ही माना जा सकता है।
उस प्रदेश के बिखरे पड़े अवशेष जिस प्राचीन सभ्यता के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं यह सम्राट भरत के काल के ही हो सकते हैं।
रथक्रांति नराह कृष्णा प्रायशो विकृताना आम मास भुजह सर्व शूरा कुचित मूर्धजा। उस अफ्रीकी क्षेत्र के लोग काले रंग के चौड़े होठ नाक वाले कच्चा मांस खाने वाले शूरवीर और धुंधराले बालों वाले होते हैं। अफ्रीका के रोडेशिया देश में ऐसे खंडहर एवं पुरातत्व प्रमाण पाए जाते हैं जिनसे प्रतीत होता है कि हजारों वर्ष पहले यहाँ कोई सभ्य जाति आ गई थी।
यूरोपियनों और अरबों के पहुँचने पर वहाँ विकट वन्य प्रदेश ही फैला पड़ा था और उनमें आदिम जातियाँ ही रहती थीं। यह खंडहर जिस काल की साक्षी देते हैं उसे भारतीयों के अफ्रीका प्रवास का काल कह सकते हैं।
ऐत्रेय ब्राह्मण के अध्याय में एक ऋचा आती है। हिरण्यन परिवृतान कृष्णान शुक्ल दत्तो मृगान मृषणारे भरतों दक्षंतम वर्धनन सप्च। सम्राट भरत ने मशनार देश में स्वर्ण आभूषण से सजे हुए सफेद दांत वाले 107 हाथियों के झुंड का दान किया। सरस्वत्या सयाकन्वो मिश्र देश मुपायो मलेच्छा संस्कृत्य चाभाषित तदा दश सहस्त्रकान सपत्नी कांश्च तान मलेच्छान शूद्र वर्गाय चाकरोत दस सहस्त्रास्तरा तेषा मध्य वैश्या बभूविरे तेषा चकार राजान राजपुत्रम पुरंदरम। भविष्य पुराण काव ऋषि मिश्र देश गए। वहां उन्होंने 10,000 मलेच्छों को सुसंस्कृत बनाया। इनमें कुछ को वैश्य कुछ को शूद्र और कुछ को क्षत्रिय की संज्ञा दी गई। उमेश चंद्र विद्यारत्न कृत मानवेरादि जन्मभूमि नामक बंगला ग्रंथ में ऐसे अनेक आधार प्रस्तुत किए हैं जिनमें चीन जापान बर्मा सियाम आदि देशों में बसने वाली मंगोल जाति का उद्भव आर्य जाति से होना सिद्ध किया गया है।
जलवायु और भूमि की विशेषता तथा उस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों के संसर्ग से गोल चेहरे चपटी नाक पीला रंग तिरछी आंखों की आकृति जैसा अंतर आ गया। मंगोलियन वस्तुतः कोई स्वतंत्र जाति नहीं वरन आर्य रक्त का ही संकरीकरण तथा जलवायु के आधार पर उत्पन्न हुआ यत्किंचित परिवर्तन है।
तथैव मलय द्वीप मेव मेव सुसिमृतम नित्य प्रमुदिता स्फीता का नाम महापुरी ब्रह्मांड पुराण। मलय देश में सुखी समुन्नत और सुविस्तृत लंका नामक महानगरी लंका थी। यलवंतो यव द्वीप सप्त राज्योपशोभते वाल्मीकि रामायण। यव द्वीप 7 राज्यों में विभक्त सुशोभित था। इंगद्वीप यव द्वीप मलय द्वीप एवच शंख द्वीप कुश द्वीप वराह द्वीप मेवच एवं षडते कतिपय अनुद्वीपा समन्ततः भारत द्वीप देशों व दक्षिणा बहु विस्तर। वायु पुराण इंगद्वीप युवद्वीप मल्यद्वीप शंख द्वीप कुश द्वीप वराह द्वीप यह सब भारत के ही अनुद्वीप उपनिवेश हैं।
वे बहुत विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए हैं। राज निघंटु में वैश्य वर्ण के देश देशांतरों में बसे हुए वर्गों के कई नाम गिनाए गए हैं।
वस्तु व्यवहारता वार्तिक पणिको वणिक
व्यवहारता बोहरे क्विट वार्तिक पिनिक और वणिक यह वैश्य वर्ग ही है।
इस क्षेत्र में चलने वाली स्थानीय भाषाओं में अभी भी संस्कृत शब्दों की भरमार है।
इतिहास वेता विरुडल कीत के अनुसार मेसोपोटामिया के एक राजा दशरथ थे।
दूसरा एक राजा हरि भी हुआ है। इस क्षेत्र पर शासन करने वाला वंश खत्री था जो क्षत्री का अपभ्रंश है। भारत के पंजाब प्रांत में क्षत्री को खत्री अभी भी कहते हैं।
खत्री पंजाब में बसी एक प्रसिद्ध जाति है। एशिया माइनर एवं निया ईस्ट के नाम से जाने जाने वाले क्षेत्र में फारस मेडिटेरेनियन सागर अरब मेसोपोटामिया क्षेत्र आते हैं।
सीरिया से पूर्व को लगा हुआ फिनीसिया है। बेबिलोनिया उसके दक्षिण में ही चालडिया भी यही है।
इस समूचे क्षेत्र में किसी समय भारतीय संस्कृति का बोलबाला था। यहाँ पनी पन्या जाति निवास करती थी जो भारत के पांड्य वर्गीय वैश्यों की ही एक उपजाति थी। ये लोग व्यवसाय का उद्देश्य लेकर वहाँ गए थे।
चोल वंश के लोग भी उस क्षेत्र में बसे थे और नौकायन व्यवसाय में प्रवीण थे।
वह चोल वंश दक्षिण भारत से वहाँ जाकर बसा था।
हिस्टोरियन हिस्ट्री ऑफ दी वर्ल्ड ग्रंथ में बेबिलोनिया के प्राचीन निवासियों को भारतीय वंश का ही माना गया है। वे लोग भारत के पूजे जाने वाले देवताओं की ही आराधना करते थे।
विद्वान पीकॉक द्वारा लिखित इंडिया इन ग्रीस ग्रंथ में जो प्रमाण और आधार प्रस्तुत किए गए हैं उनसे सिद्ध होता है कि मिश्र के प्राचीन निवासी अपने को सूर्यवंशी क्षत्रिय कहते थे और अपने को आदि मनु की संतान मानते थे। सूर्य देवता उनका उपास्य था। कर्नल एलकॉट ने थियोसोफिस्ट में यह प्रमाणित किया था कि अब से कोई 8000 वर्ष पहले भारतवासी मिश्र पहुंचे और उन्होंने उस क्षेत्र को एक उपनिवेश की तरह बसाया। इतिहास वेताओं का कथन है कि ईरान सीरिया आदि मध्य पश्चिमी एशिया में बसे हुए आर्य लोग समीपवर्ती छोटे से समुद्र को पार करके अफ्रीका महाद्वीप में पहुंचे और उन्होंने वहां बसने तथा सभ्यता विस्तार का उपक्रम चलाया। रामानुज संप्रदाय के आदि संस्थापक यवनाचार्य थे, वे अरब से भारत आए थे। उन दिनों भारतीय विद्वान ब्राह्मण अरब क्षेत्र में भी निवास करते थे। विद्वान विलफोर्ड का इस संबंध में एक प्रामाणिक लेख एशियाटिक रिसर्चेज के भाग 10 में छपा है।
उन्होंने सिद्ध किया है कि यवनाचार्य का जन्म अरब में ब्राह्मण वंश में हुआ।
वे अलेक्जेंड्रिया विश्वविद्यालय में पढ़े थे और धर्म प्रचार के लिए भारत आए थे। महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी गांधार देश की राजकुमारी थी।
आज का कंधार ही प्राचीन काल का गांधार है। पंचतंत्र में कौलिक की प्रेयसी चीना नामक लड़की का वर्णन है।
यह चीन देश की थी। महाभारत मीमांसा ग्रंथ के लेखक राय बहादुर चिंतामणि विनायक वैद्य ने अनेकों प्रमाण प्रस्तुत करते हुए यह सिद्ध किया है कि कंधार गजनी अफगानिस्तान बलूचिस्तान कला आदि भारत की उत्तरी सीमा से लगे हुए क्षेत्र को भारतीयों ने ही बसाया और समुन्नत बनाया था।
स्पष्ट है कि धर्म प्रचार के लिए शासन सत्ता की स्थापना शिक्षा कला कौशल प्रशिक्षण चिकित्सा विज्ञान आदि में जानकारी देने के लिए सुयोग्य मनीषी बड़ी संख्या में समस्त संसार में जाया करते थे।
यह जहां अपनी अधिक आवश्यकता समझते थे वहां रुक जाते थे।
भारतीय सभ्यता का विस्तार इसी आधार पर फैला है।
एक कारण यह भी था कि किन्हीं अपराधों के कारण देश निकाले का दंड पाए हुए लोग इस देश से चले गए और वहां जाकर बस गए।
इन लोगों ने भी उन देशों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए बहुत कुछ किया।
सेवा भाव से गए हुए अथवा बहिष्कृत क्षुब्ध रुष्ट होकर गए हुए लोग विदेशों में बस गए।
उनकी पीढ़ियां क्रमशः वहीं के लोगों में घुलती गईं।
जब तक भारत के साथ उनका संपर्क रहा आते जाते रहे अथवा इस देश के धर्म प्रचारक वहां पहुंचकर उपयुक्त मार्गदर्शन करते रहे तब तक उनकी संस्कृति अक्षुण बनी रही, पर जब से संबंध सूत्र ढीले हो गए और स्थानीय लोगों में ही वे अधिक घुलते गए तो उनकी संस्कृति भी वहां जैसी ही बन गई।
इन लोगों पर भारत के संस्कार कम रह गए और उसी देश की परंपराओं में वे ढल गए। ऐसे लोगों की संसार भर में बहुत बड़ी संख्या रही है। इतिहासकार प्रो शून्य हिरन ने चीन निवासियों के अति प्राचीन उद्भव स्रोतों का वर्णन करते हुए लिखा है कि चीन को भारत का ही विकास विस्तार कहा जा सकता है। स्कंद पुराण में राजवंशों का वर्णन करते हुए तुर्वसो भन्नह जना वाक्य आता है।
यवनों की उत्पत्ति तुर्वस से हुई जो राजा ययाति का पुत्र था।
पिता से अनबन होने के कारण वह देश छोड़कर अन्यत्र चला गया।
इसी प्रकार शक जाति की उत्पत्ति के बारे में कहा गया है नरिशिंतः शकाह पुत्रा। शक राजकुमार से शक जाति उत्पन्न हुई। यह शक राजा इक्ष्वाकु का पौत्र था।
मिश्र ग्रीक चीन आदि देशों के निवासी प्राचीन काल में यवन एवं शक नाम से संबोधित किए जाते थे।
शिनकेस्तु क्रियालोपादेय क्षत्रिय जातः वृषत्वं गया लोके ब्राह्मण दर्शनेन च पौंड काश्चोडु द्रविणा कम्बोजा यवना शका पारदा पल्हवाश्चीना किराता दर्दा खशा मुख बाहु रूपज जाना यो लोके जात्यो वही मलेच्छवा चश्वार्य वाच सवेते दस्युमा स्मृता मनुस्मृति। धीरे धीरे क्रिया लोप हो जाने से ब्राह्मणों का संपर्क टूट जाने से संसार में फैली हुई क्षत्रिय जातियां वृष और दस्यु बन गईं। पौंड्र ओर द्रविड़ कम्बोज यवन शक दरद खस आदि जातियां इसी प्रकार बनी। वे आर्य भाषा भूलकर मलेच्छ भाषा तथा परंपरा अपना बैठी। प्रोजीरो मैक्सिमुलर ने भौगोलिक और ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत करते हुए सिद्ध किया है कि पारसी लोग फारस में जाकर बसने से पूर्व भारत के ही निवासी थे। ईरान में बसने वाले भारत से ही वहां पहुंचे थे। ईरान शब्द को भाषावेताओं ने आर्यान शब्द का अपभ्रंश माना है।
अरब देशों में पाई जाने वाली शक जाति व्रथीन ब्राह्मणों से उत्पन्न है। मनुस्मृति के अनुसार पतित बहिष्कृत ब्राह्मणों की कई जातियों में से एक शेख भी कही जाती थी।
व्रातिस्तु जायते विप्रापात्मा भूज कंत का आवंत्य वोडघानु च पुष्प धर्षे खैव च ताननु व्याजहार तानवह प्रजा भिक्षिष्टति ते अतेन्धा पुनराह शवराह पुलिंदा मुतिवा इत्युदंत्या वह वो भवंती ऐत्रेय ब्राह्मण द 7 अप्रैल 18। अनुचित आचरण के कारण उन्हें देश निकाला दिया गया। वे अन्यत्र चले गए और उनसे आंध्र पुंड्र शव पुलिंद आदि जातियां उत्पन्न हुई।
मनुस्मृति में पतित क्षत्रियों से उत्पन्न जातियों का उल्लेख करते हुए उन्हें किराता यवना शका के वर्गों में गिनाया गया है।
शक यवन काम्बोजा पारदा पल्लवास्त था कौली सर्पा समहिषा दाश्चुला सकेला सवेते क्षत्रियास्तात धर्मस्तेशा निराकृत। महाभारत शक यवन कम्बोज पारद पल्लव कौल नाग दर्व चोल आदि जातियां बहिष्कृत क्षत्रियों से ही बन गईं।
कहीं कहीं तो यह विदेश गए भारतीय बहुत अच्छी स्थिति में बने रहे, किंतु कहीं परिस्थितियों ने बहुत ही गई गुजरी स्थिति में डाल दिया। वे वनवासियों की स्थिति में जंगलों में जाकर रहने लगे। कहीं कहीं खानाबदोशों के रूप में उन्हें भ्रमणशील जीवन अपनाकर अपना निर्वाह करना पड़ा।
ईजीरो मासिडन नॉरिस मैनिंग जानहट रोस्ट क्लेडवेल आदि विश्व प्रसिद्ध पुरातत्ववेता इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की आदिम जातियों का मूल भारत है। भारतीय लोग ही चिर प्राचीन काल में जाकर वहां बसे थे और सुविधा साधनों के अभाव में पिछड़ते हुए वर्तमान आदिवासी स्थिति में जा पहुंचे। तब से कोई 1000 वर्ष पूर्व भारत के कुछ धर्म प्रचारक अपने परिवारों सहित विश्व के कोने कोने में धर्म चक्र प्रवर्तन के लिए, धर्म सृजन के लिए निकले थे। उन्होंने जन्मभूमि का मोह छोड़ा और समस्त विश्व को अपना घर और समस्त मानव को अपना परिवार माना। उन्होंने जहां आवश्यकता और अनुकूलता देखी वहीं बसते और बढ़ते चले गए।
इन भ्रमणशील वर्गों की एक जाति ही बन गई, जिसे अब रोमिनी के नाम से पहचाना और पुकारा जाता है। इसका अस्तित्व अभी भी ईरान तुर्की मिश्र अमेरिका सोवियत संघ तथा यूरोप के कितने ही देशों में पाया जाता है। चंदेशीत देशों में जहां आमतौर से लोग गोरे रंग के होते हैं, वहां रोमनी वंश के लोग अभी भी भारतीय नक्शे एवं आकृति प्रकृति के होते हैं। उनकी अपनी विशेषताएं हैं जो स्थानीय निवासियों से सर्वथा भिन्न स्तर की दिखाई देती हैं। इनका रंग भी गोरों की तुलना में काफी काला मटमैला होता है। उन्हें भारतीय मूल का मानने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। इतिहास पुराण के पृष्ठ उलटने से हमें इसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि किसी समय भारतीय समस्त विश्व से अपना संपर्क बनाए हुए थे और विभिन्न क्रियाकलापों से संसार के बहुत बड़े क्षेत्र की सेवा सहायता कर रहे थे। जड़ सूख जाने से पत्तों का सूख जाना भी स्वाभाविक है। भारत कमजोर हुआ तो यहाँ से विदेशों में गए लोग भी संबंध सूत्र ढीला हो जाने अथवा टूट जाने से वहीं के निवासी बन गए।
स्थानीय धर्म परंपरा एवं संस्कृति अपनाकर वहीं के हो गए।
आज भी हमें दूर देशों में यही बिराने बने हुए अपने बहुत बड़ी संख्या में फैले हुए दिख सकते हैं। विश्व निर्माण की ओर से आंखें न मूंद लें।
समस्त भूमंडल को किसी समय हम किस प्रकार अपना घर मानकर उसे संजोने संभालने और सर्वांग सुंदर बनाने में लगे हुए थे, इस गौरव गरिमा को जानने के साथ ही हमें अपनी पुण्य परंपरा का बोध होना चाहिए। वर्तमान दुर्व्यवस्था पर ग्लानी अनुभव करनी चाहिए और आत्मगौरव की ऐसी किरणें अंतःकरण में जगानी चाहिए जिनके आधार पर पुनः भूतकालीन स्थिति में लौट चलने की, पूर्वजों की महान धरोहर संभालने की बेचैनी अनुभव होने लगे। इतिहास का प्रमुख उद्देश्य भविष्य निर्माण की प्रेरणा देना ही होता है। अतीत के गौरव को यदि भावनापूर्वक पढ़ा जाए तो आज हमारे भीतर वैसी ही स्फुरना उत्पन्न होनी चाहिए।
एशिया को 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं। 1 मध्य एशिया जिसमें भारत की सीमा से लगे उत्तर दिशा में चीन रूस आते हैं।
2 पश्चिम एशिया जिसमें अरब देश इराक ईरान आदि आते हैं। 3 पूर्वी एशिया जिसमें इंडोनेशिया इंडो चाइना मलेशिया आदि आते हैं। 4 मूल भारत जो आज तो छोटा रह गया है पर कुछ दिन पूर्व उसका विस्तार था। तिब्बत नेपाल इराक बर्मा लंका पाकिस्तान बांग्लादेश यह सब इसी शताब्दी तक भारत के ही अविच्छिन्न अंग थे।
अब दुर्भाग्य ने उन्हें हमसे अलग कर दिया तो भी कल तक वे अपने ही थे, इसे बुलाया नहीं जा सकता है। इन क्षेत्रों में फैला जन समूह भारतीय लोगों से ही बना है, उनकी नस्ल और संस्कृति में यत्किंचित ही अंतर आया है।
इनकी अधिकांश जनता हिंदू अथवा बौद्ध धर्म की अनुगामिनी है।
यो इस्लाम धर्म भी इन विलग हुए क्षेत्रों में फैला है और ईसाई मतानुयायी भी बड़े हैं, फिर भी नस्ल रक्त और पूर्वजों का इतिहास इतना महत्वहीन नहीं होता कि उसे सहज ही उपेक्षित कर दिया जाए। इस गई गुजरी स्थिति में भी मूल भारत के क्षेत्र में भारतीयता का गहरा पुट अभी भी विद्यमान है।
संसार जिन महाद्वीपों में विभक्त है उनमें अमेरिका यूरोप अफ्रीका और एशिया मुख्य हैं।
ऑस्ट्रेलिया को भी यों महाद्वीप ही माना जाता है और न्यूजीलैंड को भी कोई कोई इसी वर्ग में गिन लेते हैं।
विश्व के इस समस्त भूभाग में भारतीय धर्म एवं संस्कृति का वैभव विस्तार प्रमाण सिद्ध है।
इन सभी महाद्वीपों में किसी समय भारतवासी पहुंचे हैं और उन क्षेत्रों के विकास में बहुमूल्य योगदान देते रहे हैं।
यही कारण है कि इन देशों के पुरुषार्थी एवं परमार्थप्रायण महामानवों को विश्व नागरिकों द्वारा जगतगुरु चक्रवर्ती शासक देवमानव आदि नामों से संबोधित किया जाता रहा है।
अगले पृष्ठों में यह पढ़ा जा सकेगा कि अन्य समस्त द्वीपों में और अपने एशिया के पूर्वी मध्यवर्ती और पश्चिमी भागों में कितनी गहराई तक भारतीयता उत्प्रोत रही है।
इस व्यापक क्षेत्र को भारत का कितना बड़ा अनुदान मिलता रहा है। यूं इतिहास के पृष्ठों पर धार्मिक विस्तार का ही अधिक उल्लेख मिलता है, पर इसका अर्थ यह न समझा जाए कि अर्थव्यवस्था, शासन स्थापना, समाज संगठन, कला, उद्योग, शिल्प आदि में वह योगदान स्वल्प रहा है। वस्तुतः प्राचीनकाल में राजवंशों को तथा धर्मधारणाओं को ही अधिक महत्व दिया जाता और इतिहासकार उसी प्रकार की प्रवृत्तियों को पुस्तकों, शिलालेखों, ताम्रपत्रों, भित्तिचित्रों में अंकित करते थे। वस्तुतः भारत का योगदान सर्वतोमुखी रहा है।
इस गई गुजरी स्थिति में भी विश्व के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। धन, विज्ञान, कला, शिल्प, अस्त्र आदि के क्षेत्रों में समुन्नत कहलाने वाले देश कितने ही आगे बढ़ गए हों, पर वे आध्यात्मवादी उदात्त दृष्टिकोण में अभी भी कहीं पीछे हैं और यह दार्शनिक कमी उन्हें इतनी महंगी पड़ रही है कि भौतिक प्रगति का सारा आनंद ही चला गया। सच तो यह है कि एकांगी प्रगति इनके गले में नाग फांस बनकर रह रही है और अपनी कराल दाढ़ों में उन्हें ग्रसित करती चली जा रही है। भारत का तत्वज्ञान वह अमृत है जिसे प्राप्त करके अभावग्रस्त परिस्थितियों में भी अजस्र आनंद अनुभव किया जा सकता है।
फिर जब समृद्धि भी साथ हो तो कहना ही क्या। समस्त विश्व यह आशा लगाए बैठा है कि आज नहीं तो कल भारत से सूर्योदय होगा और उसकी प्रकाश किरणें सर्वग्रासी अंधकार को दूर करेंगी।
समय आ गया है कि हम आगे बढ़ें,
अपने को सुधारें, अपना घर सुधारें, किंतु इस सुधार प्रक्रिया को अपने छोटे दायरे तक ही सीमाबद्ध न रखें।
उसका अधिकाधिक विस्तृत क्षेत्र में प्रसार करें और मानव जाति की युग की महती आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए वह सब कुछ कर गुजरें जो इन परिस्थितियों में संभव है।
आत्मनिर्माण के अतिरिक्त हमारे विकास कार्यक्रमों में विश्व निर्माण का लक्ष्य जुड़ा रहना चाहिए। हमारे पूर्वज इसी प्रकार की बहुमुखी सेवा साधना का लक्ष्य बनाकर चले थे। हमारी गतिविधियां भी उसी प्रकार की होनी चाहिए।
अब समस्त विश्व एक छोटे परिवार की तरह हो गया है। मात्र अपनी कोठरी में झाड़ लगा लेने से काम नहीं चलेगा, पूरा घर बुहारना पड़ेगा।
कोई व्यक्ति या देश अपनी कितनी ही उन्नति क्यों न कर ले, अन्यत्र विकृति बिखरी होगी तो वह उन्नति भी स्थिर न रह सकेगी। हमें आरंभ से ही अपने विकास कार्यक्रमों में आत्मोत्कर्ष के साथ साथ विश्व कल्याण की गतिविधियों को भी विस्तृत करते चलना चाहिए। हमारी प्रधान पूंजी आध्यात्मवादी तत्व दर्शन है,
उसकी अभी कमी नहीं है।
स्वामी विवेकानंद, रामतीर्थ आदि ने विश्व कल्याण की जिन प्रवृत्तियों को हाथ में लिया था उन्हें यथावत चालू रखने की आज वैसी ही आवश्यकता है। अमेरिका और भारतीय संस्कृति। अमेरिका महाद्वीप में मानवीय सभ्यता चिर प्राचीन है।
वहाँ भी उसी समय से मनुष्य बसते आए हैं जब से कि अन्य देशों में बसे और बड़े हैं।
प्राचीन काल में रूस और अलास्का के बीच वाला समुद्र नहीं था। मध्य एशिया के वे लोग जिन्होंने भारत बसाया, दूसरे रास्ते अमेरिका पहुंचे थे और वहां आबाद हुए थे। कोलंबस के पहुंचने के समय उस देश में प्रायः 10 लाख के लगभग आदिवासी रेड इंडियन रहते थे। आधुनिक अमेरिका का इतिहास थोड़े ही दिनों का है। यूरोप से भारत के लिए सीधा रास्ता तलाश करने के लिए निकला हुआ क्रिस्टोफर कोलंबस का जलयान 12 अक्टूबर 1492 को रास्ता भूलकर संयोगवश इस महाद्वीप के तट पर जा लगा, जिसे आजकल अमेरिका कहते हैं। कोलंबस ने सर्वप्रथम वहां स्पेन का झंडा गाड़ा। पीछे वहां की प्राकृतिक संपदा से लाभान्वित होने के लिए यूरोप के दूसरे देशों से भी लोग वहां पहुंचे और बसे। हॉलैंड, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड, पुर्तगाल आदि के लोगों ने वहां अपनी बस्तियां बसाईं। जब यूरोपियन लोग अमेरिका महाद्वीप में पहुंचे, तब वह भूखंड सर्वथा जनशून्य था।
वहां बहुसंख्यक आदिवासी रहते थे जिनके चेहरे भी भारतीयों से मिलते जुलते थे और चूंकि कोलंबस भारत की तलाश में निकला था, इसलिए उतरते ही उसने यह समझा कि वह भारत आ पहुंचा। अस्तु, वहां के निवासियों को उसने भारतीय इंडियन कहकर संबोधित किया।
उनके शरीर अपेक्षाकृत अधिक लालिमा लिए हुए थे, इसलिए उस विशेषता के अनुरूप उन्हें रेड इंडियन कहा जाने लगा। गोरों ने जब उन्हें खदेड़ना उजाड़ना शुरू किया और उनके अधिकृत क्षेत्र को हथियाया तो उन्होंने संघर्ष भी किया, किंतु पुराने हाथ से चलाए जाने वाले शस्त्रों और पुरानी युद्ध कला को बारूदी अस्त्रों और चातुर्यपूर्ण युद्ध कौशल के मुकाबले में सफलता नहीं मिली। रेड इंडियनों का भारी विनाश हुआ। ये बहुत थोड़े रह गए।
वंशनाश को बचाने के लिए पीछे गोरों को भी समझ आए और उन्हें सन 1887 में कानूनी संरक्षण मिला।
अब उनकी संख्या सारे अमेरिका में 5 लाख के करीब है। उनकी कुछ बस्तियां कैलिफोर्निया, आरिजोना, न्यू मैक्सिको आदि में बस गई हैं।
इन रेड इंडियनों के दो कबीले हूपी और हूजा वनवासी होते हुए भी शाकाहारी हैं। भारतीयों की तरह वे अहिंसा पर विश्वास करते हैं, वनस्पति और अन्न पर गुजारा करते हैं, अपने को देवता की संतान मानते हैं। इनकी शांत और सरल प्रकृति देखते हुए उनकी धर्म प्रकृति में भारतीय आचार की अभी भी झांकी मिल सकती है। कहा जाता है कि यूरोपियनों के जाने से पूर्व अमेरिका वीरान पड़ा था। उन्होंने जाकर उसे बसाया और सुसंस्कृत बनाया, पर वस्तुतः बात ऐसी है नहीं।
स्पेनिश सैनिक और अधिकारी जब मेक्सिको पहुंचे तो वहां भी उन्होंने ऐसे ही एंड्रीज सभ्यता के प्रमाण पाए। पुरातत्ववेताओं ने ग्वालेटा में माया सभ्यता के अवशेष पाए और युक्टन नगरी में ऐसे अवशेष देखे जो वहां ईसा की प्रथम शताब्दी में एक समुन्नत सभ्यता का परिचय देते थे। यह खोजबीन जारी रही। उस देश में बिखरे हुए अनेक अवशेष खोजे गए तो स्पष्ट हुआ कि वहां ईसा से 1000 वर्ष पूर्व भी सुयोग्य और साधन संपन्न मनुष्यों की बस्तियां मौजूद थी।
कोलंबिया, इक्वेडर, पेरू, बोलीविया, चिली आदि में जो प्रमाण बिखरे पड़े हैं उनसे पता चलता है कि वह देश सर्वथा सदा से वीरान नहीं रहा है।
किसी समय उस देश की स्थिति सुविकसित देशों जैसी ही थी। वहां माया, कुजगा, एंड्रीज सभ्यताओं के समुन्नत लोग निवास करते थे।
शोध प्रयत्नों से स्पष्ट होता है कि माया सभ्यता के लोगों को गणित का अच्छा ज्ञान था।
उनका अपना पंचांग था, उसमें 365 दिन होते थे। नक्षत्र विद्या वे जानते थे और ग्रहण कब पड़ेगा इसकी पूर्व जानकारी रखते थे। उनके भव्य मंदिर थे जिनमें अखंड अग्नि की स्थापना रहती थी तथा पूजा होती थी। शुक्र ग्रह को अपनी सूर्य परिक्रमा पूरी करने में 52 वर्ष लगते हैं, इसी आधार पर अखंड अग्नि का नवीनीकरण भी 52 वर्ष उपरांत होता रहता था। भारतीय पौराणिक उल्लेख और मेक्सिको में प्रचलित किजक्स गाथाओं में आश्चर्यजनक साम्य था।
दोनों की तुलना करने पर लगता है कि बिना तथ्यपूर्ण आधारों के दंत कथाओं में इतना अधिक साम्य नहीं हो सकता।
महाभारत के अनुसार माया नगरी पातालपुरी में थी। वहां की राजकुमारी उलूपी का विवाह अर्जुन के साथ हुआ था। विष्णु पुराण में पाताल लोक का और भी अधिक विस्तार पूर्वक वर्णन है और वह अमेरिका की प्राचीन स्थिति पर वैसा ही प्रकाश डालता है जैसा कि उस तत्व के ज्ञाता पुरातत्ववेता बताते हैं।
मेक्सिको की दंत कथाएं ही नहीं, वहां के सरकारी इतिहास में भी ऐसा ही वर्णन है कि उनके पूर्वज पूर्व से आए थे।
जेम्स चर्चमूर ने उन पूर्वजों को विशाल भूखंड के स्वामी, अत्यंत शक्तिशाली और जलयात्रा करने में निष्णात बताया है।
वाल्मीकि रामायण में भी माया सभ्यता के अनुयायी भारतीयों की चर्चा लगभग इन्हीं शब्दों में की गई है।
डॉक्टर जीरो मार्टिन का प्रतिपादन है कि पूर्व से सूर्यवंशी लोग पुरातन अमेरिका में आकर बसे थे। मेक्सिको की पुराण कथा है कि उस देश में एक लंबी दाढ़ी, ऊंचे कद, काले बाल और श्वेत वर्ण का महापुरुष किसी अज्ञात देश से आया। उसने इस देश में कृषि, शिल्प तथा शिक्षा का प्रशिक्षण किया। उसका नाम क्वेत्सालकटली था। उसी की कृपा से मेक्सिको समुन्नत हुआ। कॉन्क्वेस्ट ऑफ मेक्सिको के लेखक पोस्कार का अनुमान है कि यह महापुरुष भारत से आया था और उसका भारतीय नाम सालकटनकट था। वाल्मीकि रामायण सर्ग 8 श्लोक 23-24 में वर्णन है कि देवताओं से पराजित होकर सालकटनकट वंश के असुर पाताल लोक चले गए थे। ये लोग मूलतः लंका के निवासी थे।
अहिरावण आदि का पाताल में रहना और उनका लंका के साथ संपर्क सूत्र जुड़ा होना भी रामायण में लिखा है। इससे भी पाताल लोक अमेरिका में भारतीयों का आवागमन सिद्ध होता है।
अशक्नुवंतस्ते विष्णुन प्रत्युधु बलार्दिता त्यक्त्वा लंका गता वस्तु पातालम सहपत्नयः सुमालिन समासाद्य राक्षसम रघुसितम स्थिता प्रख्यात वीर्यासो वंशे सालकटनकटे। देवराज विष्णु का सामना न कर सकने पर पराजित असुर लंका से पाताल लोक से सपरिवार चले गए। सालकटनकट वंश के असुरों ने अपना निवास वहीं बनाया। मेक्सिको निवासियों की प्राचीन सभ्यता मैक कहलाती है। उसके विभिन्न पक्षों का पर्यवेक्षण करने पर उसके साथ भारतीय सभ्यता का असाधारण साम्य दृष्टिगोचर होता है। लेली मिचल द्वारा लिखित कॉन्क्वेस्ट ऑफ दी माया ग्रंथ में मेक्सिको में ऐसे अनेक प्रमाणों का संग्रह है जिनसे पुरातन भारत और मेक्सिको की सांस्कृतिक घनिष्ठता सहज सिद्ध होती है।
मेक्सिको के प्राचीन मंदिर कोपन की दीवारों पर हाथी पर सवार महावत के भित्ति चित्र में भारतीय चित्रकला की अमित छाप है।
निकल में मुंडधारी शिव की प्रतिमा एक भव्य वेदी पर प्रतिष्ठित मिली है।
अनंत, वासुकी और तक्षक सर्प देवताओं की प्रतिमाएं मंदिर के स्तंभों पर खुदी मिली हैं। क्विरिग्वा में मिली मिट्टी की प्राचीन प्रतिमाओं में भारतीय शिल्प देखा जा सकता है। मंदिरों में भित्ति चित्रों पर सोने का काम हुआ है। जिस काल के मंदिर हैं उस समय सोना केवल देवताओं के लिए ही भारत में प्रचलित हुआ था।
अन्यत्र न तो वह उपलब्ध था और न उसका प्रयोग होता था। स्वर्ण खचित मेक्सिको के भित्ति चित्रों की कला उस देश के साथ भारत की घनिष्ठता का प्रमाण देती है। मय सभ्यता में गणेश, इंद्र और हनुमान की देव पूजा प्रचलित थी। मृतकों का दाह संस्कार होता था। श्राद्ध तर्पण का प्रचलन था। धार्मिक और दार्शनिक मान्यताएं भी भारत से मिलती जुलती थी। इस प्रकार के अनेक प्रमाण भारत और मेक्सिको के बीच आवागमन तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रामाणिक परिचय प्रस्तुत करते हैं। मेक्सिको के सरकारी इतिहास ग्रंथ में उल्लेख है कि उस देश में माया सभ्यता पर प्रकाश डालने वाला किसी समय प्रचुर साहित्य उपलब्ध था,
लेकिन उसे ईसाई बिशप डियागो ने होली की तरह जलवा दिया। किसी प्रकार तीन पुस्तकें बच गई थीं जिसमें से एक पेरिस में, एक मिरिड में और तीसरी ड्रेसडन में सुरक्षित है। शोधकर्ताओं ने यह स्वीकार किया है कि माया और इनका सभ्यताओं के समय वहां के निवासी नापतोल, शासन व्यवस्था, धर्म, सामाजिक परंपराओं तथा उस क्षेत्र को सुरम्य और समुन्नत बनाने में शताब्दियों तक बड़ा परिश्रम करते रहे। समय के किस कुचक्र ने उन्हें क्यों और कैसे विनाश के गर्त में धकेल दिया, इस संबंध में भी कुछ अधिकृत रूप से नहीं कहा जा सकता है। तो भी यह मानने में अड़चन नहीं रह जाती कि उस देश को समुन्नत बनाने का श्री गणेश भारतवासियों द्वारा ही किया गया था।
कुछ समय पूर्व अमेरिका की जॉन होपकिंस नामक पत्रिका में एक शोधपूर्ण लेख छपा था, जिसमें अनेक प्रमाण यह सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत किए गए थे कि प्राचीन भारत और प्राचीन अमेरिका में घनिष्ठ संबंध था। व्यापारी और धर्मोपदेशक लंबी जल यात्राएं करके आते जाते थे।
उपलब्ध खंडहरों में मंदिर और देवी देवताओं की मूर्तियों के जो अवशेष उपलब्ध हुए हैं, वे बताते हैं कि उस समय अमेरिका एक प्रकार से भारतवर्ष का सांस्कृतिक उपनिवेश ही था। इंद्र, अग्नि, गणेश, शिव और सूर्य की मूर्तियां वैसी ही हैं जैसी भारत में पाई जाती हैं। मंदिरों और भवनों का निर्माण भारतीय वास्तुकला के अनुरूप ही है।
राजमुकुट, आभूषण, पात्र, शस्त्र औजार आदि का मिलान करने पर उनका साम्य तत्कालीन भारतीय प्रचलन के अतिरिक्त और किसी के साथ बैठता ही नहीं। उन दिनों मैक्सिको में राम सितवा त्योहार भारी उत्साह के साथ मनाया जाता था।
भारत में रामलीला जैसा राम सीता के चरित्रों का उसमें प्रदर्शन होता था। एक खंडहर में नाग प्रतिमा ठीक उसी आकृति की है जैसी भारत के सांची नगर में विद्यमान है।
भारत में जिस प्रकार समाधि स्तूप एवं स्मारक बनाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार के गगनचुंबी स्तूप अमेरिका में बनते थे, जिन्हें टिकल कहा जाता था। टिकलों में देव पूजा के विविध विधि विधान संपन्न होते थे।
टोलोक मेक्सिको में विशालकाय पाषाण स्तंभों पर भारतीय देवताओं की प्रतिमाएं बड़े कलात्मक ढंग से खुदी हुई हैं।
कोयून हॉन्ड्रास दक्षिण अमेरिका में दैत्य की मूर्ति भी उसी आकृति में है जिस प्रकार असुरों का अपने यहाँ वर्णन पाया जाता है। कापुरिगो ग्वाटेमाला में उपलब्ध शिला प्रतिमाओं में स्पष्टतः भारतीय शिल्प छलकता देखा जा सकता है।
जिस प्रकार अनेक खंभों वाले मंदिर भारत में जहां तहां दीख पड़ते हैं, उसी प्रकार युक्तास के ध्वंसावशेष थाउजेंड कॉलम्स हजार स्तंभ को देखा जा सकता है। बिना चूना गारे की सहायता से केवल पत्थरों से बने भवन भारत की विशिष्ट वास्तुकला के अंग हैं।
ऐसा ही एक तक्षशिला जैसा ध्वस्त खंडहर चाको अमेरिका में विद्यमान है।
पत्थरों की कलात्मक खुदाई के वैसे ही नमूने अमेरिका के खंडहरों में भी मिले हैं जैसे कि उत्तर भारत के प्राचीन राजमहलों अथवा देवालयों में दृष्टिगोचर होते हैं। इसी काल के शिलालेख भारत के साथ सांस्कृतिक संबंध होने की पुष्टि करते हैं।
सालोमन का न्याय और महासाधना जातक की साहित्यिक पृष्ठभूमि में असाधारण साम्य है।
विशालकाय जलयान बनाने का इतिहास भारतीय नेतृत्व में ही आरंभ होता है।
सुदूर के भूखंडों तक समुद्र की दूरी को चीरते हुए पहुंच सकने की क्षमता उसी की थी।
यही कारण है कि अमेरिका जैसे दूरवर्ती देश में भी भारतीयों का आवास प्रवास क्रम चल पड़ना संभव हो सका।
अमेरिका प्राचीन काल में सर्वथा सुनसान अथवा अविज्ञात देश नहीं रहा है। 17वीं और 18वीं शताब्दी में गोरे लोग वहां जाकर बसे और उस महाद्वीप को फिर से आबाद किया। इससे पूर्व वहां मय सभ्यता के ऐसे अनेकानेक प्रमाण पाए जाते हैं कि वहां सुविकसित और सुसंपन्न लोग निवास करते थे। 1800 फीट ऊंचा शिवलिंग, विशाल सूर्य मंदिर, विशाल भवन, वास्तु शिक्षा, लेखन वाचन उपकरण, कई तरह के औजार, प्रामाणिक कालगणना का पंचांग वहां मिले हैं और प्राचीन काल की मय सभ्यता का पता चला है।
पुराणों के अनुसार मय सभ्यता का नामकरण मय दानव के नाम पर हुआ, जो देवों से युद्ध में हार कर पाताल लोक चला गया था।
पृथ्वी का गोलार्ध देखने से स्पष्ट हो जाता है कि अमेरिका भारत के ठीक पीछे या नीचे है।
पाताल अर्थात नीचे का लोक, इसे नाग लोक भी कहते हैं।
इस क्षेत्र के निवासी नागवंशी थे,
इसी से उसका नाम नाग लोक पड़ा।
दुर्गा सप्तशती में कितने ही राक्षसों के पाताल चले जाने का वर्णन है। भगवती दुर्गा ने उन्हें परामर्श दिया, यूयम प्रयात पातालम यदि जीवितुम इच्छित है, अर्थात यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल चले जाओ।
वे लोग बड़ी संख्या में पाताल चले गए और वहां बस गए।
अपने समुन्नत ज्ञान एवं पराक्रम से उनने उस भूमि क्षेत्र को समृद्ध बनाया।
लाखों वर्षों में पृथ्वी का मानचित्र बहुत बदलता रहा है।
आज जहां समुद्र है वहां कभी थल था।
इस समय जो भूभाग दिखाई पड़ते हैं वे कभी अथाह जलराशि के गर्त में डूबे हुए थे। भूगर्भ में होने वाली उथल पुथल, हिमप्रलय, वृष्टि असंतुलन, पृथ्वी की धुरी में हेरफेर, ध्रुव प्रदेशों में परिवर्तन जैसे कारणों ने थल को जल में और जल को थल में परिणत किया है। इसलिए भूखंड कत्ते और जुड़ते रहे हैं। आज के कितने ही क्षेत्र जो समुद्र पार हैं, वे प्राचीन काल में एक ही थल भाग के अंतर्गत थे और बिना जलयानों के ही वहां जाना संभव था।
इसके अतिरिक्त नौकायन था।
इसके अतिरिक्त नौकायन की कला भी अति प्राचीन काल से ही मनुष्यों द्वारा प्रयुक्त होती आई है।
उस समय के दुस्साहसी लोग लंबी समुद्र यात्राएं करने में अपने पुरुषार्थ का परिचय देते रहे हैं।
इसलिए इस संदेह के लिए गुंजाइश नहीं रह जाती कि जो देश आज समुद्र पार हैं, वहां भारतीय सभ्यता किस प्रकार पहुंच पाई होगी। वस्तुतः वैसी कठिनाई थी नहीं और सुदूर देशों का यातायात उन दिनों के साधनों से भी भली प्रकार संपन्न हो जाता था।
तब से 200 वर्ष पूर्व तुर्की नौसेना के अध्यक्ष पीरी का बहुत सा सामान तोपकापी के राजभवन में मिला था। उसमें एक अति प्राचीन काल का भू सर्वेक्षण का एक नक्शा भी मिला। यह मुद्दतों बलिन के शाही अजायब घर में रखा रहा। उस पर संसार भर के भू विज्ञानवेता खोज करते रहे। अंततः अमेरिका के विशेषज्ञ आर्लिंगटन मलारी ने उस पर जो रिपोर्ट दी है उसमें उस नक्शे को किसी समय का अत्यंत प्रामाणिक मानचित्र बताया गया है। इसमें भारत, मिश्र, मध्यपूर्व तथा यूरोप को एक ही थलखंड दिखाया गया है।
समुद्री व्यवधान जिस तरह अब हो गए और उस कारण से जो विभाजन हो गया है वह उस समय नहीं था।
तब अमेरिका से भी उस भूखंड की दूरी अधिक नहीं थी।
उस समय बहुत सा अमेरिका तो पानी में डूबा हुआ था जो पीछे समुद्र तल से उभर कर ऊपर आ गया।
सन 1927 में तैयार हुआ ना पेरू दक्षिण अमेरिका में पुरातत्व विभाग ने जो खुदाई कराई है उसमें एक ऐसा शिव त्रिशूल मिला है जिसकी ऊंचाई 850 फीट है।
इसी में 20 टन भारी और 24 फीट लंबा एक शिवलिंग भी है जिस पर ग्रह नक्षत्रों की आंतरिक स्थिति अंकित है। एक ही पत्थर से तराशा हुआ 10 टन भारी सूर्य मंदिर द्वार, 3 कतारों में उपलब्ध 48 प्रतिमाएं भी उस काल के कला कौशल की साक्षी देते हैं। शोधकर्ता H0S0 वेलामी और P0 लान ने उस सामग्री पर शोध पुस्तक प्रकाशित की है जिसमें सिद्ध किया गया है कि यह सामग्री अब से 27,000 वर्ष पुरानी है।
उस समय के पंचांग से पता होता है कि उस समय पृथ्वी की धुरी और कक्षा वर्तमान समय की अपेक्षा भिन्न प्रकार की थी। तब वर्ष 252 दिन का था, 365 दिन का नहीं।
पेरू शब्द का अर्थ संस्कृत में सूर्य का देश है।
सूर्य पुत्रों का देश पेरू कहा जाए यह स्वाभाविक ही है।
भारतीयों का दिया हुआ यही नामकरण पेरू में अभी भी प्रचलित है।
अमेरिका से 2400 मील दूर हवाई द्वीप समूह पर आज अमेरिका का शासन है। किसी समय वहां भारतीयों का आधिपत्य था।
वहां की चट्टानों पर जो आकृतियां खुदी हुई हैं वे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई मुहरों पर खुदी आकृतियों से हूबहू मिलती हैं। शिलालेखों और उपलब्ध प्रतिमाओं में सूर्य देवता तथा त्रिशूल, चक्र, पद्म, शंख आदि देव आयुधों की आकृतियां हैं। इसी द्वीप समूह के एक द्वीप कोआई के संग्रहालय में ऐसे अनेक प्रमाण सुरक्षित हैं और भारतीय पुरातत्ववेता डॉक्टर शून्य छावड़ा ने उस देश में भ्रमण करके ऐसे 40 प्रमाण संग्रह किए थे जिनसे भारत के साथ उन देशों के प्रगाढ़ संबंधों का परिचय मिलता है। हवाई द्वीप निवासी लोगों की आम धारणा है कि उनके पूर्वज भारतीय थे। उनकी मुखाकृतियां स्पष्टतः भारतीयों से ही मिलती हैं। यूरोपियनों तथा अमरीकनों से उनका रक्त संबंध तनिक भी नहीं दिखता, यो अब वहां पाश्चात्य सभ्यता का ही बोलबाला है। इस प्रदेश की भाषा में संस्कृत शब्दों की भरमार पाई जाती है।
अमेरिका में इंग्लैंड के लोग अधिक पहुंचे। जन बल, धन बल और शस्त्र बल की शक्तियां भी उन्हीं के पास अधिक थी, तदनुसार उन्हीं का शासन उस देश पर स्थापित हो गया। पहले इंग्लैंड की सरकार ही वहां पर शासन करती थी, पीछे वह देश स्वतंत्र हो गया।
फिर भी वहां की संस्कृति, भाषा और विशिष्टता अभी भी इंग्लैंड मूल के लोगों की ही है। इसी विशाल भूभाग पर एक खंड कनाडा है। कनाडा 40 लाख वर्ग मील में बसा है। बहुत सा क्षेत्र अंग्रेजों का है।
30% फ्रांसीसी रहते हैं।
बड़ी संख्या में यूरोपियन भी रहते हैं। आबादी 25 करोड़ के करीब है। कनाडा में भी आदिवासी बसे हुए हैं। उन्हें भारतीय मूल का माना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में उन्हें रेड इंडियन कहा जाता है, किंतु कनाडा के मूल निवासी इंडियन शब्द से ही संबोधित किए जाते हैं।
उनके साथ रेड का विशेषण नहीं लगाया जाता। इतिहास विशेषज्ञों का मत है कि प्राचीन काल में एशिया और अमेरिका के बीच थल मार्ग था। मध्य एशिया के आर्य वंश के लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने इंडियनों को वहां बसा पाया। तब से कोई 250 वर्ष पूर्व उनकी संख्या कनाडा में 2 लाख थी।
उजाड़ने की हठ ने उन्हें बर्बाद कर दिया।
पीछे वहां भी समझ आई और तब से उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं दी और उनकी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए एक विशेष विभाग बनाया।
वंश विनाश से बचे लोगों की संख्या अब पुनः बढ़ने लगी है और 2 लाख के करीब जा पहुंची है।
अब उनकी व्यवस्थित बस्तियां स्थापित हो गई हैं।
अमेरिका निवासियों को भारतीय दर्शन और संस्कृति में गहरी दिलचस्पी है। यूं उस देश में पूरी तरह ईसाई धर्म ही फैला हुआ है अन्य धर्मावलंबी नगण्य संख्या में हैं।
फिर भी वहां के विज्ञ वर्ग का विश्वास है कि भारतीयता और मानवता एक ही तथ्य के दो नाम हैं।
भारतीय संस्कृति कभी विश्व संस्कृति रही है और भविष्य में यदि समस्त विश्व में सांस्कृतिक एकता स्थापित करने की आवश्यकता पड़े तो उस प्रयोजन की पूर्ति में भारतीय तत्वदर्शन की ही प्रमुख भूमिका रहेगी।
उसमें वे सभी बीज मौजूद हैं जिनके आधार पर मानवीय एकता और महानता का परिपोषण हो सके।
भूतकाल में विश्व को अनुपम अनुदान देने वाली और मानवीय उत्कर्ष में असाधारण योगदान देने वाली भारतीय संस्कृति को अमेरिका में बहुत श्रद्धा और गंभीरता से समझने का प्रयत्न किया जाता है, ताकि प्रगति और शांति के लिए भविष्य में भी उन तथ्यों का उपयोग किया जा सके।
अमेरिका के तत्वदर्शी विल ड्यूरेस ने भारत भूमि को अनेक दृष्टिकोणों से अमेरिका की भी माता माना है। वे कहते हैं, भारत भूमि में उत्पन्न बौद्ध धर्म ने ईसाई धर्म की नींव रखी, उनकी संस्कृति ने हमारी ईसाइयत को जन्म दिया, वहां की प्राचीन गणतंत्र प्रणाली ने अर्वाचीन प्रजातंत्र को जन्म दिया।
दर्शन और संस्कृति की दृष्टि से वह समस्त मानव जाति को बहुमूल्य प्रेरणाएं प्रदान करती रही है। भारत भूमि उस देशवासियों की ही नहीं अमेरिकनों की भी माता है।
अमेरिका के प्रख्यात दार्शनिक एमिसन और थोरो पर भारतीय विचारधारा का गहरा प्रभाव पड़ा है और उन्होंने जो कुछ लिखा है उससे भारतीय चिंतन का उभार पग पग पर परिलक्षित होता है। एमिसन के काव्य ब्रह्म को गीता और उपनिषदों का सार ही कहना चाहिए। उनका दी ओवर सोल निबंध भारतीय चिंतन का प्रामाणिक परिचय माना जाता है। अमेरिकी कवि विटमैन के कविता संग्रह लीव्स ऑफ ग्रास को वेदांत का भावानुवाद कहा गया है। उस देश के मान्य लेखक मार्क ट्वेन सन 1895 में भारत भ्रमण के लिए आए थे। लौटने पर उन्होंने अपना भ्रमण वृतांत फ्लाइंग द इक्वेयर नामक पुस्तक के रूप में छपाया है।
इसमें उन्होंने भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक चिंतन की गरिमा पर गहरा प्रकाश डाला है। अमेरिका के अर्वाचीन लेखक और कवि टी शून्य वी शून्य इलियट की रचनाओं और कविताओं में उपनिषदों के संदर्भ भरे पड़े हैं। कैलिफोर्निया में क्रिस्टोफर इशवुड ने गीता के समस्त श्लोकों का अंग्रेजी पद्यों में अनुवाद किया है। इतना ही नहीं, वे भारतीय योग पद्धति से साधारण जीवन भी बिताते रहे हैं।
अंग्रेजी का एक लोकप्रिय उपन्यास रेजर्स एज है। कठोपनिषद के क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या श्लोक के प्रथम शब्द क्षुरस्य धारा पर इसका नामकरण किया गया है। क्षुरस्य का अर्थ रेजर स्पष्ट है। यह उपन्यास अमेरिका में इतना लोकप्रिय हुआ कि इसकी 30 लाख प्रतियां हाथों हाथ बिक गईं।
इसी परंपरा में हरम मेलाविन और एमोस ब्रोनसन आलकोट के नाम आते हैं, जिन्होंने भारतीय दर्शन को गहराई तक समझने में अपने जीवन का अधिकांश भाग समर्पित कर दिया और जो पाया उसे बड़ी सुंदरता के साथ जनसाधारण तक पहुंचाने का प्रयत्न किया।
महाकवि वॉल्ट हिटमैन की दी कैटलिस्ट पढ़ने से वे अमेरिकी नहीं वरन भक्ति भावनाओं से ओतप्रोत कोई संत प्रतीत होते थे। हार्वर्ड विश्वविद्यालय से अब तक प्राच्य ग्रंथमाला के अंतर्गत 40 से अधिक ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। इसकी पाठ्य सामग्री में विशेषतया भारतीय धर्म अध्यात्म तथा दर्शन का ही प्रमुख रूप से उल्लेख है। येल की पुस्तक हिंदू पैथिज्म सामान्य पाठक को संक्षेप में हिंदू धर्म की अच्छी जानकारी करा देती है। राल्फ वाल्डो इमर्सन हेनरी डेविड थोरो जैसे विद्वानों ने न केवल जनता को भारतीय दर्शन से परिचित कराया वरन स्वयं अपने आचार व्यवहार को उसी ढांचे में ढालने का सफल प्रयत्न किया।
उनके विचारों पर भारतीय चिंतन की गहरी छाप थी। उन्होंने अपनी लेखनी और करनी से जो कुछ कहा है उसे तत्वतः भारतीय दर्शन का अपने ढंग से किया हुआ प्रचार कहा जाए तो इसमें कुछ भी अत्युक्ति न होगी।
उन्होंने अमेरिकन जनता के मन में भारतीय दर्शन के प्रति गहरी श्रद्धा जमाने और अभिरुचि उत्पन्न करने की महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत की है। अमेरिका के संस्कृतज्ञ उद्भव विद्वान मॉरिस ब्लूमफील्ड एवं बाल्टीमोर ने वेद चेतना पर एक शोधपूर्ण ग्रंथ लिखा है जो हार्वर्ड ओरिएंटल सीरीज के अंतर्गत छपा है।
इसके लेखन संपादन और प्रकाशन ने में 14 वर्ष लगे हैं और प्रचुर धन खर्च हुआ है। इस ग्रंथ में वेदों के महत्वपूर्ण और जटिल प्रमाणों का सरलता एवं प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुतीकरण किया गया है।
यूं इस विषय पर इससे पूर्व वान थियोडोर बर्ग जॉर्ज वुडलर आदि विद्वान कलम उठाते रहे हैं। वैदिक कॉन्कॉर्डेंस ने बिखरी जानकारियों को एक सूत्र में पिरो देने और जनसाधारण को वेदों की पृष्ठभूमि बता देने में अनोखी सफलता प्राप्त की है। जर्मन विद्वान मैक्स मुलर ने अपनी पुस्तक दी सीक्रेट बुक ऑफ ईस्ट प्रकाशित कराई तो पाश्चात्य जगत को भारत की महान संस्कृति एवं दार्शनिक पृष्ठभूमि का पता चला। इसके बाद दूसरी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू दी साइंस ऑफ रिलीजन छपी। उन्हीं दिनों जेम्स फ्रीमैन क्लार्क की 10 ग्रेट रिलीजन्स छपी। इन पुस्तकों का समस्त यूरोप विशेषतया अमेरिका में जोरों का स्वागत हुआ। तब तक भारतीय दर्शन को रूढ़िवादी पुरातनपंथी मात्र समझा जाता था।
इन पुस्तकों ने लोगों की आंखें खोल दी।
क्लार्क अमेरिकी थे। इनकी पुस्तक इतनी लोकप्रिय हुई कि थोड़े ही समय में उसके 23 संस्करण बिक गए। भारतीय धर्म और दर्शन की खोज के लिए अमेरिकी उत्साह और भी आगे बढ़ा और आत्मिक ज्ञान पिपासा पर गहरा प्रकाश डालने वाले ग्रंथ एक के बाद एक प्रकाशित होते चले गए। एडवर्ड हेल की द एज ऑफ फेबल एवं ओरिएंटल रिलीजन एंड देयर रिलेशंस टू यूनिवर्सल रिलीजन नाम की पुस्तकें छपी। हिंदू धर्म और बौद्ध के संबंध में जानकारी देने वाली उपयुक्त पुस्तक द एज ऑफ फेबल उस देश के ज्ञान पिपासुओं में बहुत लोकप्रिय है। एडविन आनरोल्ड के लाइट ऑफ एशिया में भारत के स्वर्णिम अतीत का अच्छा वर्णन है। इस संदर्भ में अधिक अध्ययन अन्वेषण करने के लिए अमेरिकन ओरिएंटल सोसाइटी एवं यूनिटेरियल सोसाइटी ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। उसके प्रयास से उस देश के प्रबुद्ध वर्ग ने भारतीय दर्शन की गरिमा अधिक अच्छी तरह जानने और उससे प्रकाश ग्रहण करने का अवसर प्राप्त किया है। इस प्रयास में संलग्न विद्वान एलब्रिज सेल्सबरी विलियम हविटनी एटू येल का नाम विशेष रूप से स्मरणीय है। अमेरिका और भारत के प्राचीन एवं अर्वाचीन संबंधों पर प्रकाश डालने वाली पुस्तकों में से कुछ निम्नलिखित हैं। वन चमनलाल कृत हिंदू अमेरिका, टू चेसली बैटी कृत अमेरिका बिफोर कोलंबस, थ्री प्रोजीरो हिम्बेरटो कृत 10,000 ईयर्स ओल्ड सिविलाइजेशंस इन अमेरिका, फोर स्वांटन कृत इंडियन ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, फाइव कंपाजेट कृत दी हेरिटेज ऑफ अमेरिका, सिक्स ब्रावलिंसन कृत इंटरपीस बिटवीन इंडिया एंड दी वेस्ट, सेवन हैरिसन कृत इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, एट जे जीरो टी जीरो रीट कृत ट्रकल्चर्स मीट एट तारा देवी, नाइन थेकर कृत लास्ट वर्ड ऑफ ए अमेरिकन लेडी अबाउट इंडिया, टेन पी जीरो एस जीरो वर्मा कृत 115 ईयर्स ऑफ इंडो अमेरिकन कोऑपरेशन इन कल्चरल फील्ड्स, 11 टीचिंग ऑफ सिक्स गुरुज इन अमेरिका, 12 इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन फिलासफी इन वेस्टर्न कल्चर, 13 एमिसन कृत ए वेस्टर्न स्पिरिचुअल लीडर इंटरेस्टेड विद इंडियन फिलासफी, 14 जॉन रीड कृत इंडियन इन्फ्लुएंस ऑन यू जीरो एस जीरो ए जीरो लिटरेचर, 15 पी जीरो एस जीरो वारी कृत वेदांत इन यू जीरो एस जीरो ए जीरो, 16 टी जीरो जबेज कृत इंडिया अमेरिका एंड वर्ल्ड ब्रदरहुड, 17 फीचर कृत बुक्स ऑन इंडिया। अमेरिका में 8 विश्वविद्यालयों में संस्कृत शिक्षा की व्यवस्था है। येल, हार्वर्ड, कोलंबिया, पेंसिल्वेनिया, जॉन्स हॉपकिंस, शिकागो, प्रिंसटन।
कैलिफोर्निया में संस्कृत शिक्षा पहले से ही दी जाती है।
अब अन्य शिक्षा संस्थाओं में भी इसका प्रचलन हो रहा है।
विश्व में बौद्ध धर्म सुधरे हुए हिंदू धर्म के रूप में ही गया है, अतः उसका प्राचीन ब्राह्मण धर्म की तुलना में अधिक स्वागत हुआ है।
अमेरिका में बौद्ध धर्म को सम्मानास्पद स्थान मिला है। सन 1915 की जनगणना में वहां केवल 40,000 बौद्ध थे। सन 1961 की जनगणना में उनकी संख्या 5,00,000 तक पहुंच गई।
हवाई द्वीप समूह में बौद्ध धर्मानुयायी बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं।
पहला बौद्ध मठ अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में सन 1905 में बना था। अब उस देश में 54 मठ और 70 स्थिव हैं। फ्रांस ऑफ बुद्धिज्म सोसाइटी इस दिशा में सराहनीय काम कर रही है। उसके लिए आचार्य धर्मपाल ने लगभग वैसा ही कार्य किया जैसा स्वामी विवेकानंद ने। थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कर्नल अल्काट अमेरिकी थे। उन्होंने 1880 में लंका आकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। मैडम ब्लेविटस्की, एनी बीसेंट आदि की सहायता से उन्होंने संसार में थियोसाफी का प्रसार किया।
कहना न होगा कि इस दर्शन में 80% हिंदू धर्म की मान्यताओं का ही समावेश है।
स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ आदि भारतीय संतों ने अमेरिका में जिस रूप में हिंदू धर्म को प्रस्तुत किया, उससे वहां इसके प्रति और भी अधिक श्रद्धा सद्भावना का विकास हुआ। अमेरिका के आध्यात्मिक नेताओं ने शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया, जो सन 1893 में मई से अक्टूबर तक चला। इसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में स्वामी विवेकानंद और अन्य कई विद्वान पहुंचे।
इसके बाद स्वामी जी ने घूम घूमकर कई संस्थाओं में भाषण दिए और भारतीय तत्वज्ञान की जीवन में कितनी आवश्यकता है इस तथ्य का परिचय कराया।
तत्कालीन पत्रों ने स्वामी जी के विचारों का भरसक प्रसार किया और उसके प्रतिपादन को एक स्वर से सराहा। स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित वेदांत आंदोलन का आरंभ न्यूयॉर्क से हुआ था।
अब तक वह बहुत व्यापक बन चुका है। उसका संचालन 10 समर्थ केंद्रों द्वारा होता है।
ये केंद्र बोस्टन, प्रोविडेंस, सैन फ्रांसिस्को, पोर्टलैंड, शिकागो, सेंट लुई, लॉस एंजल्स, सिएटल में स्थापित हैं।
इनमें सैन एंटोन घेरी का आश्रम सबसे पुराना है।
कैलिफोर्निया में 2 वेदांत आश्रम हैं, एक आल्मा आश्रम, दूसरा लेक्टाही।
पोर्टलैंड आश्रम 120 एकड़ में है।
न्यूयॉर्क में रामकृष्ण विवेकानंद केंद्र ने एक और नया आश्रम थाउजेंड पार्क में विवेकानंद कुटीर के नाम से खोला है।
इन केंद्रों में कितने ही हिंदू मिशनरी रहते हैं और प्रचार कार्य करते हैं।
वेदांत धर्म का प्रतिपादन करने वाला छोटा बड़ा अंग्रेजी साहित्य भी इन केंद्रों से प्रकाशित होता है।
इन केंद्रों को अमेरिकी जनता ने प्रचुर साधन प्रदान किए हैं। प्रभावित, संबंधित और सहयोगी लोगों में उच्च कोटि के बुद्धिजीवी कलाकार एवं प्रभावशाली लोगों की बहुत बड़ी संख्या है।
स्वामी विवेकानंद के पश्चात स्वामी रामतीर्थ ने अमेरिकी जनता को हिंदू दर्शन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी और उस ओर प्रबुद्ध वर्ग की गहरी दिलचस्पी पैदा की। वे 1902 में जापान के विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के उपरांत अमेरिका पहुंचे थे। वे उस देश में लगभग 2 वर्ष रहे।
इस अवधि में उन्होंने वहां की जनता पर जो छाप छोड़ी वह चिरकाल तक अविस्मरणीय मानी जाती रहेगी। वहां के पत्रों ने उन्हें जागृत ईसा तक कहा।
यूरोप का आर्यावर्त जर्मनी। जर्मनीवासियों की मान्यता है कि वे आर्य रक्त के विशुद्ध उत्तराधिकारी हैं।
प्राचीन काल में हिमालय की उपत्यकाओं में आर्य वंश विकसित हुआ था। वहां से वे लोग भारत की ओर गए।
भूमंडल के अधिकाधिक क्षेत्र की सेवा साधना करने की महत्वाकांक्षाओं ने उन्हें भारत से मध्य एशिया के मार्ग से होकर यूरोप महाद्वीप की ओर गतिशील होने की प्रेरणा दी।
उन दिनों यूरोप का जितना क्षेत्र यातायात की संभव सीमाओं में आ सका वहां वे गए और बसे।
चूंकि अन्य क्षेत्रों में स्वल्प संख्या में पहुंचे थे इसलिए वहां के आदिवासियों के साथ उनका रक्त सम्मिश्रण होता चला गया और ऐसी नस्ल बन गई जिसे विशुद्ध आर्यवंशी नहीं कह सकते। द्वितीय महायुद्ध में पराजित जर्मनी के अधिनायक हिटलर ने अपनी पुस्तक मीन कैम्फ में इस तथ्य को बहुत जोर शोर से उभारा कि जर्मन लोग ही विशुद्ध आर्य रक्त के हैं।
उसी देश में प्रागैतिहासिक काल में आर्य लोग समुचित संख्या में बसे और उन्होंने रक्त शुद्धि का विशेष रूप से ध्यान रखा।
वह परंपरा यथावत कायम है और जर्मन लोग नस्ल की दृष्टि से विशुद्ध आर्यवंशी कहलाने के अधिकारी हैं।
भारतीयों के बारे में उसने आक्षेप लगाया है कि वे लोग अब विशुद्ध आर्यवंश के नहीं रहे। द्रविड़ आदि अनार्यों के साथ उनके रक्त का सम्मिश्रण हुआ है। अन्य देशों से भी बहुत लोग वहां आते बसते और वंशवृद्धि करते रहे हैं। इस प्रकार भारतीय रक्त की दृष्टि से वर्णशंकर स्तर के हो गए हैं। उनकी मुखाकृति और दूसरी विशेषताएं वैसी नहीं रहीं जैसी कि आर्यवंशियों की होनी चाहिए। यूं जर्मनी में इन दिनों ईसाई धर्म ही प्रचलित है, वहां के निवासी हिंदू धर्मानुयायी नहीं हैं, तो भी उन्हें आर्य संस्कृति और उसके तत्व दर्शन पर भारी गर्व है। उसके संबंध में अधिकाधिक जानने की, सारगर्भित रहस्यों के उद्घाटन की और सर्वतोमुखी प्रगति के आधारभूत प्रकाश को अपनाने की उतनी तीव्र उत्कंठा है जितनी कि हम भारतीयों में भी नहीं देखी जाती।
हिटलर ने नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह स्वस्तिक बनाया था। यही आर्य धर्म का आदि प्रतीक है। स्वस्तिक का ही सुधरा रूप ओम है।
ओम का उपयोग प्रत्येक मंत्र के आरंभ में तथा अन्यत्र उपासना क्रमों में होता है। मांगलिक कार्यों एवं स्थानों में स्वस्तिक को चित्रित किया जाता है। भारत में सांप्रदायिक बिखराव आने से और भी प्रकार की सांकेतिक पूजाएं चल पड़ी हैं, किंतु आर्य वंश के आदि प्रतीक स्वस्तिक को आधारभूत पाकर जर्मनी ने उसी को अपने सांस्कृतिक संबल के रूप में अपनाया।
जर्मन विद्वानों ने यह सिद्ध किया है कि जर्मन शब्द शर्मन शब्द का अपभ्रंश है। भूतकाल में वहां भारतीय ब्राह्मण पहुंचे थे और उस देश का नामकरण करते हुए सांस्कृतिक मान्यताओं का सूत्रपात किया था।
हिटलर ने जर्मन जाति को आर्य रक्त की उत्तराधिकारी के रूप में राजनीतिक रंग देकर बहुत उभारा था, यह ठीक है, पर इससे पूर्व भी उस देश के विद्वान बहुत दिनों से भारतीय संस्कृति की ओर असाधारण रूप से आकर्षित रहे हैं। वे उसके संबंध में अधिकाधिक जानने के लिए घोर परिश्रम भी करते रहे हैं। कहते हैं कि आकर्षण इसलिए भी अधिक था कि वेद को ज्ञान के अतिरिक्त विज्ञान का भी भंडागार माना जाता रहा और यह समझा जाता रहा है कि यदि वेद भंडार के रहस्यमय वैज्ञानिक तथ्यों को जाना जा सके तो भौतिक प्रगति के अनेकों सारगर्भित सूत्र हाथ में आ सकते हैं।
संभव है जर्मन मनीषियों ने ज्ञान के साथ विज्ञान का दोहरा लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से प्राचीन भारत के आर्य साहित्य की खोजबीन करने में अधिक उत्साह दिखाया हो।
जो हो यह निश्चित है कि लगन परिश्रम और मनोयोग के साथ पिछली शताब्दियों में जर्मन मनीषियों द्वारा आर्य साहित्य की खोज की गई है वह अनोखी है। संसार भर में अन्यत्र कहीं से भी उतना उत्साह नहीं दिखाया गया।
यहाँ तक कि भारत में भी उतनी अभिरुचि और तत्परता नहीं रही। संस्कृत के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा में वेद का अनुवाद होने का श्रेय जर्मनी को ही मिलेगा।
भारत में हिंदी भाषा में जो अनुवाद हुए हैं उनमें से बहुतों में प्रायः जर्मन अनुवाद का सहारा लिया गया है।
वेदों की ज्ञान गरिमा और महत्ता से विज्ञ समाज को परिचित कराने विस्तृत करने में जर्मन विद्वान प्रोजीरो मैक्सिमुलर ने असाधारण श्रम और मनोयोग नियोजित किया है। संस्कृत भाषा के इस महापंडित ने ऋग्वेद का अनुवाद किया। वह सन 1856 में प्रकाशित हुआ।
इसके अतिरिक्त उन्होंने वेद वाड़मय के महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकाश में लाने के लिए अन्य कई गवेषणा भरे ग्रंथ लिखे हैं।
सीक्रेट बुक ऑफ द ईस्ट पुस्तकमाला के अंतर्गत इनका प्रकाशन हुआ है और वह शोध निबंधों में प्राच्य विद्या के संबंध में बहुत ही प्रामाणिक माने जाते हैं। वेद के इतिहास पर उनका गुटेंगन ग्रंथ खोजपूर्ण है। प्रोजीरो मैक्सिमुला के ग्रंथों का सार सन 1938 में डॉक्टर जीरो रोसेन ने प्रकाशित कराया। इसके बाद कितने ही जर्मन विद्वानों की रुचि वैदिक साहित्य की ओर बढ़ी और उन्होंने कितने ही महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। हिंट्रिक्स तिमरा का सन 1879 में प्रकाशित प्राचीन भारतीय जीवन और वैदिक युग में आर्यों की आध्यात्मिक संस्कृति पठनीय है। हेरमन ओल्डन का वेद धर्म पुरातन भारत की आध्यात्मिक जीवनचर्या पर प्रकाश डालता है। यह ग्रंथ सन 1894 में छपा। सन 1891 में अल्फ्रेड हिलीब्रेट का भारतीय देवताओं की सामाजिक भूमिका प्रकाशित हुआ। सन 1927 से लेकर 1929 तक जर्मनी की प्रकाशन संस्थाओं ने वेदों के कई संस्करण छापे। वेद और ब्राह्मणत्व ग्रंथ जर्मन विद्वान के 0S0 गोगुनेर ने लिखा।
हेफमेन का दी विजडम ऑफ दी वेदाज में जर्मन और भारतीय संस्कृति का तुलनात्मक और समन्वयात्मक विश्लेषण किया गया है।
हेरमन लिस्मेल का दी ओल्ड आर्यन ऑफ दी काइंड एंड देयर गॉड्स ग्रंथ 1935 में प्रकाशित हुआ और उसमें वेदकालीन भारतीय गौरव गरिमा पर प्रकाश डाला गया। हरमैन रथक के दी हाउस ऑफ द अर्थ ग्रंथ में वेद साहित्य के संबंध में प्रस्तुत होने वाली अनेक शंकाओं और जिज्ञासाओं का सारगर्भित समाधान है। सन 1888 में प्राग के काल विश्वविद्यालय ने ऋग्वेद 6 खंडों में प्रकाशित किया।
इसे उच्चारण की दृष्टि से बहुत प्रामाणिक माना जाता है।
1913 में अल्फ्रेड हिलीब्रेंट ने भी ऋग्वेद का एक अनुवाद प्रकाशित कराया।
कैम्ब्रिज से सन 1923 में के 00 गोल्डना का ऋग्वेद का अनुवाद 2 खंडों में प्रकाशित हुआ है।
ऋग्वेद के काल और इतिहास के संबंध में एक गवेषणात्मक माल्टेट ग्रंथ ब्रूस्ट ने प्रकाशित कराया है। अथर्ववेद का जर्मन भाषा में अनुवाद फ्रेडरिक ने किया जो सन 1923 में छपा।
जूलियस ग्रिल का आयुर्वेद का अनुवाद पूरा तो नहीं है पर जितना भी अंश छपा है माननीय है।
ग्रिल ने अथर्ववेद के कुछ अंशों का जर्मन भाषा में पद्यानुवाद किया है जो सन 1879 में छपा था।
संस्कृत विद्वान पॉल डैनसन ने 16 उपनिषदे नामक ग्रंथ छपाया पर इतने से ही उन्हें संतोष नहीं हुआ।
पीछे उन्होंने उपनिषदों की दार्शनिकता पर प्रकाश डालने वाला वृहद ग्रंथ लिखा और 1915 में छपाया। एक अन्य जर्मन विद्वान हटेलर ने उपनिषदों की ज्ञान गरिमा नामक ग्रंथ लिखा और सन 1921 में प्रकाशित कराया। उन्हीं दिनों विद्वान हिलब्रोथ ने भारतीय ब्राह्मण और उपनिषद ग्रंथ प्रकाशित कराया। ब्रोथ का शोध कार्य जारी रहा और उन्होंने 1951 में और भी अधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ दी ब्रेथ ऑफ दी एटलेल प्रकाशित कराया।
इन ग्रंथों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन करने से पता चलता है कि पाश्चात्य लेखकों को भारतीय धर्म एवं संस्कृति में कितनी गहरी दिलचस्पी थी और उन्होंने तत्संबंधी ज्ञान का उद्घाटन करने के लिए कितना अधिक श्रम किया।
ए जीरो हिल्ले ब्रांडट लिखित वेदिशे माइथोलॉजी ग्रंथ वेद साहित्य पर अच्छा प्रभाव डालता है। ओल्डनबर्ग, मैकडानेल, रिचर्ड पिसेल, एस जीरो अल्सफर्ड, हेनरी ल्यूडर्स ने वेद साहित्य में से एक से बढ़कर एक महत्वपूर्ण संदर्भ जनसाधारण के सम्मुख प्रस्तुत किए। प्रोजीरो शेक्टेलोविम ने वैदिक सूक्तों की ऐसी सुंदर व्याख्या की जिसे पढ़कर पाश्चात्य विद्वानों का ध्यान इस अद्भुत ज्ञान की ओर विशेष रूप से आकृष्ट हुआ। मार्टिन हाग, एच ओटल, जूलियस अगलीन ने ब्राह्मण ग्रंथों पर शोध कार्य किया। शतपथ ब्राह्मण जैसा विशाल ग्रंथ जर्मन भाषा में सेकंड बुक ऑफ द ईस्ट सीरीज के अंतर्गत 4 खंडों में छपा है। हरम ओल्डनबर्ग ने दी वेल्टाशायजु देर ब्राह्मण टेक्स्टे में ब्राह्मण ग्रंथों पर अत्यंत गंभीर और विवेचनापूर्ण प्रकाश डाला है। स्टेन कोनो ने भी जर्मन भाषा में ब्राह्मण ग्रंथों पर शोधपूर्ण निबंध लिखे हैं। विलियम रॉड लिखित स्टार्टुष्ट गोसिल्ल शतट इन आल्टेन इंडियन ग्रंथ में ब्राह्मण ग्रंथों के दर्शन पर गंभीर प्रकाश डाला गया है। कार्ल होफमन का अधिकांश समय ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसंधान में ही बीता। एकर वुटिल ड्यूपेरनी का संपादित 50 उपनिषदों का संकलन जर्मन देश में बड़े चाव से पढ़ा गया। आथर शोपेनहावर, ओटो बोथालिकट, हिल्ले ब्रांड, योहालेस हटल, एडवर्ड एयर ने उपनिषदों की विवेचना पर सारगर्भित ग्रंथ लिखे हैं। तो जीरो पालिड्यून का 60 उपनिषदों का समीक्षा सहित अनुवाद ग्रंथ दी फिलॉसफी देर उपनिषद्स पढ़ने से प्रतीत होता है कि वे इस महान दर्शन से कितने अधिक प्रभावित थे। उन्होंने अपना नाम बदलकर देवसेन रख लिया था। उपनिषद साहित्य पर ओल्डनबर्ग का दी लेरे देर उपनिषद इन डंट द आन फ्राडे देज बुधिज्यूस तथा जैकोबी का दी एंड विक्लुंग देर गाटेस डीवी देन इंडन ग्रंथ पढ़ने से प्रतीत होता है कि इन लोगों ने कितनी गहराई से उन्हें पढ़ा तथा खोजा है और उनका सारतत्व विज्ञ समाज के सम्मुख रखा है।
वेद ब्राह्मण उपनिषदों से आगे बढ़कर जर्मन विद्वानों ने पुराणों पर भी खोज की है और उनमें से कईयों को अनुवाद सहित प्रकाशित कराया है।
पुराणों पर समीक्षात्मक तथा गवेषणात्मक ग्रंथ भी छापे हैं। ज्यूरिथ का पुराणों का जर्मन अनुवाद छापा गया और उसके कई संस्करण प्रकाशित हुए। हाइनरिथ जिमर का भारतीय पुराण सन 1936 में छपा था।
इसे पढ़ने पर पुराणों के काल, उद्देश्य और आधार पर नवीन दृष्टिकोण उपलब्ध होता है। भारतीय संस्कृति के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालने वाले कितने ही ग्रंथ भी जर्मनी में छपे हैं। लेखकों ने गंभीर अध्ययन करके विस्मृत तथ्यों को विज्ञ समाज के सामने खोजपूर्ण सामग्री के रूप में प्रस्तुत किया है।
F0 फिनसेका का ग्रंथ गंगा की कथा बलिन से सन 1857 में प्रकाशित हुआ था। उसमें पवित्र गंगा तथा उससे संबंधित उपाख्यानों पर सारगर्भित प्रकाश डाला गया है।
फिनसेका का ही एक दूसरा ग्रंथ हैम्बर्ग से भारतीय दर्शन पर प्रकाशित हुआ है। इसमें पौर्वात्य और पाश्चात्य दर्शन शास्त्रों की तुलना करते हुए भारत के तत्वदर्शियों की सूक्ष्म बुद्धि को मुक्त कंठ से सराहा गया है।
प्राचीन भारतीय साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ विक्टर निल्स ने लिखा है। यह इतना महत्वपूर्ण है कि उसका अनुवाद अंग्रेजी में हुआ, जिससे अंग्रेजी भाषी जनता को महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। जोहान जेकब मेयर ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र का अनुवाद किया, जो 1926 में लिपिजिक से प्रकाशित हुआ। रिचार्ड स्मिथ ने वात्सायन के कामसूत्र का अनुवाद किया और वह सन 1897 में प्रकाशित हुआ। जर्मन भाषा के एक ग्रंथ मातंग लीला का भी रोचक अनुवाद उपलब्ध है। संस्कृत व्याकरण की जटिलता सर्वविदित है। जर्मन विद्वान यह प्रयत्न करते रहे कि उन्हें इस व्याकरण को जर्मन भाषा में उपलब्ध करने में सफलता मिले तो संस्कृत के महत्वपूर्ण ग्रंथों को समझना और उनका सार निकालना संभव हो सके। जिन खोजा तिन पाइयां की उक्ति के अनुसार इस कार्य में कई जर्मन विद्वान लगे और कठोर परिश्रम के बाद अंततः उन्होंने सफलता प्राप्त कर ही ली। डॉक्टर जीरो कीलहर्न विशेषतया इसी प्रयोजन के लिए भारत आए और उन्होंने अनेक संस्कृत विद्वानों से बड़ी अनुनय विनय के पश्चात संस्कृत व्याकरण का ज्ञान प्राप्त किया।
इससे पूर्व और भी कई जर्मन विद्वान इस दिशा में प्रयास कर चुके थे।
इनमें ओटो बोडलिंक, अल्बर्ट वेवर, थियोडोर गोल्डस्टकर, जे जीरो अग्लिंग, वी जीरो लेविक, आर जीरो फ्रांके के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।
इन लोगों ने भी संस्कृत व्याकरण को जर्मन भाषा में प्रस्तुत करने के लिए घोर परिश्रम किया था। कीलहर ने उन प्रयत्नों में एक सुनहरी कड़ी और जोड़ दी।
उन्होंने पतंजलि महाभाष्य पर एक सुंदर ग्रंथ लिखा है।
वे भारत में बहुत दिनों तक अध्ययन करने के उपरांत जर्मनी गए और वहां उन्होंने प्रो शून्य मैक्सिमुला के साथ वेदों के अनुवाद कार्य में सहयोग दिया।
जर्मनी के गाटिजन विश्वविद्यालय में वे संस्कृत के प्राध्यापक नियुक्त हुए। इसके अतिरिक्त उन्होंने एनसाइक्लोपीडिया ऑफ आर्यन रिसर्च नामक ग्रंथ संपादन किया, जो अनेक जानकारियों से परिपूर्ण था।
संस्कृत व्याकरण पर जर्मन भाषा में दो और भी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं।
वन एडल्फ स्टेंजलर कृत एलिमेंटर बुक दो संस्कृत स्प्राखें और जेकब बाकर नागेल कृत आल्टनशे ग्रामेटिका। इन ग्रंथों के सहारे जर्मन विद्वानों को संस्कृत साहित्य का गहन अध्ययन कर सकने की चाबी मिल गई।
जर्मनी में अभी भी भारतीय दर्शन के प्रति गहरी आस्था है। वहां 11 विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषाओं के पढ़ाने तथा शोध अन्वेषण की व्यवस्था है। योग विद्या सिखाने वाली 50 पंजीकृत पाठशालाएं भी चलती हैं। जर्मनी के दार्शनिक कांट, हीगल, शोपनहावर, गेटे, शिलर, हिर्मिन हेस आदि के विचारों पर भारतीय संस्कृति की गहरी छाप है। यहां तक कि विस्माक, लूथर, कार्ल मार्क्स तक ने अपने सुधारवादी दर्शनों में भारतीय मान्यताओं से प्रेरणा ग्रहण की है। नीत्से जैसा अतिमानववादी नास्तिक तक अपने विचारों की पुष्टि में भारतीय प्रतिपादनों को प्रमाण रूप में प्रस्तुत करता रहा है। उपरोक्त पंक्तियों में जर्मनी में भारतीय तत्वज्ञान के प्रति असाधारण श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए प्रमुखता के साथ चर्चा की गई है, पर यह उत्साह न्यूनाधिक मात्रा में यूरोप के अन्य देशों में भी विद्यमान है।
अंग्रेजी, फ्रेंच, ग्रीक, लैटिन आदि भाषाओं में भी आर्ष साहित्य के अनुवाद कम नहीं हुए हैं।
उन देशों के निवासियों में भी भारतीय तत्वदर्शन के समझने की उत्कट अभिलाषा देखी जाती है। विश्वविद्यालयों के माध्यम से ऐसी शोधें होती रहती हैं जिससे भारतीय मान्यताओं का सहज ही प्रतिपादन होता है। यूरोप के कतिपय देशों में ऐसे प्रमाण मिलते रहते हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि उस क्षेत्र में भी समय समय पर भारतीय पहुंचते रहे हैं और राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक चेतना उत्पन्न करने के लिए वहां के निवासियों की महत्वपूर्ण सहायता करते रहे हैं।
ईसा मसीह के बारे में प्रसिद्ध है कि वे तक्षशिला विश्वविद्यालय के छात्र रहे और वहां बौद्ध दर्शन का अध्ययन करके वापस लौट गए।
अपने यहाँ की भाषा और स्थिति के अनुरूप उन्होंने बौद्ध दर्शन के प्रेम, अहिंसा आदि सिद्धांतों का प्रचार प्रतिपादन अपने ढंग से किया।
उनके उत्तराधिकारियों ने उसका नामकरण अपने गुरु के नाम पर ईसा धर्म अथवा ईसाई धर्म कर दिया। वस्तुतः भारतीय दर्शन का क्षेत्रीय विचार ही ईसाई धर्म के रूप में विकसित हुआ है और आज यूरोप का अधिकांश भाग उसी प्रकाश से लाभान्वित हो रहा है।
जर्मन के प्रायः प्रत्येक कॉलेज में संस्कृत भाषा पढ़ाने की व्यवस्था है। संसार में एकमात्र जर्मन रेडियो ही महीने में 2 बार संस्कृत भाषा में प्रसारण करता है। ऐसी व्यवस्था स्वयं भारत तक में नहीं है।
इन दिनों भी उस देश में संस्कृत भाषा के ऐसे उद्भट विद्वान मिलेंगे जो हमारे आचार्य परीक्षोत्तीर्ण स्नातकों की सिट्टी पिट्टी गुम कर सकें।
भारतीय योग और संस्कृति की थोड़ी सी चर्चा करने वाले भी जर्मनी में बहुत लोकप्रिय हो जाते हैं। महेश योगी ने अपना प्रचार करने में पश्चिम जर्मनी में ही अधिक सफलता पाई। वहीं के नागरिकों ने एक हवाई जहाज उन्हें भेंट किया।
वहां सामान्य ज्ञान के भारतीय विद्यार्थी योग की चर्चा करके जर्मन नागरिकों से अच्छा धन कमा लेते हैं। गांधी जन्म शताब्दी जितने समारोह के साथ जर्मनी में मनाई गई थी उतनी शायद ही किसी देश में मनी हो। सरकार ने गांधी जी का टिकट निकाला और वहां के रेडियो, टेलीविजन तथा प्रेस ने गांधी सिद्धांतों पर पूरे उत्साह के साथ प्रकाश डाला। कॉलेजों में गांधी व्याख्यान मालाएं चली और यह सिलसिला प्रायः एक वर्ष तक चलता रहा।
उस देश में भारत जर्मन सोसाइटी एक सुदृढ़ संस्था है जिसके 30 नगरों में शाखा कार्यालय हैं। इस संगठन के द्वारा भारत और जर्मन को सांस्कृतिक दृष्टि से अधिक समीप लाने का प्रयत्न किया जाता है और उस देश में पढ़ने वाले छात्रों के लिए आवश्यक सुविधाएं जुटाने का प्रयत्न किया जाता है।
जारी रखें।